ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी और निराहंकारी, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उन दिनों में बाबा के अंतिम महावाक्य थे कि बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निराहंकारी बनो। वास्तव में ये सारे ज्ञान का सार है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति में इसको सभी ने अनुभव किया तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना जरूरी है। इन तीन शब्दों का बहुत गहरा संबंध है। जितना हम निराकारी बनते हैं उतना निर्विकारी बनते जाते हैं, और जितना निर्विकारी बनते जाते हैं उतना निराहंकारी बनते जाते हैं। वास्तव में ये संपूर्णता की निशानी है। तो एक बात हमें समझना है कि देहाभिमान रूपी जो बीज है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों रूपी फल और फूल लगते हैं, और आत्म अभिमानी रूपी जो बीज है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं। इसलिए हमें जो देहाभिमान का बीज है उसको योग अग्नि में भस्म करना है, और आत्म अभिमानी का जो बीज है उसको स्नेह के साथ पुरुषार्थ का पानी देना है, ताकि हमारे जीवन रूपी पेड़ पर सर्व गुणों के फल और फूल लदे रहें और लगे रहें। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पहला कदम है निराकारी स्थिति अनुभव करना। बाबा ने आज भी मुरली में कहा है, जितना आप निराकारी बनते जाएंगे आपका नंबर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही निराकारी बाप की और निराकार के घर की याद स्वतः ही आती है। और योगाभ्यास के द्वारा हमारी स्थिति निर्विकारी बनती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी रेस योगाभ्यास में है। विश्वव्यापी ये जो रेस है वो योगाभ्यास में है। इसलिए अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाने की चाहना अगर हम रखते हैं तो उसके लिए दिल से निराकारी स्थिति का अभ्यास हमें करते रहना जरूरी है। हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं दो पांच साल तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है। ये पहला पाठ तो नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसके कारण आगे बढ़ते जाते हैं और लड़खड़ाते रहते जाते हैं। तो हमें ये पक्की बात दिल में बिठाना है, अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाने के सपने अगर हम देखते हैं तो उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति को घोट घोट के, कूट कूट के, रट रट के हमें पक्का करना है। हर मुरली में बाबा ये बात दोहराते हैं, इतने वर्षों से दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? वो सुप्रीम टीचर हैं, इसलिए दोहराते हैं क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है, 83 जन्मों का आत्मा में जो कूट कूट के देह का भान भरा पड़ा है उसको हमने हटाना है, और 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे उसको हमें जुटाना है। 84 जन्मों का होमवर्क है और हमारे पास बहुत थोड़ा समय बाकी है। हाथी चला गया, पूंछ की पूंछ बाकी है, तो उसके लिए पूरी दृढ़ता के साथ, लगन के साथ हमें इस अभ्यास को करना होगा। उसके लिए हर रोज अमृत वेले हमें एक प्रयोग करना है, हर रोज करना है। निराकारी शिवपिता ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में अवतरित होकर मेरे सामने खड़े हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, निराकारी बाप मुझे निराकारी तिलक लगा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूं तो निराकारी तिलक पर बाबा विजय का तिलक लगा रहे हैं, वी शेप का, और हमें वरदान दे रहे हैं बच्चे सारे दिन भर में विजयी बन के रहो। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, इसलिए पवित्रता के सागर बाबा मुझ आत्मा को बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी पहना रहे हैं। ऐसा प्रयोग हर रोज करना है और सारे दिन भर में स्वयं को डबल तिलकधारी और पवित्रता का ताजधारी अनुभव करना है, तो स्वतः ही निराकारी स्थिति बनने में हमें मदद मिलती जाएगी। दूसरी बात, विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करना है। इसका मतलब क्या है? विधि अगर सही होगी तो सिद्धियां आपको अनुभव होगी, आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियां आपको अनुभव होगी। विधि बड़ी सरल है, आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहले आत्मा की आंख से आत्मा को देखना होगा, दिव्य नेत्र से दिव्य स्वरूप आत्मा को देखें कि मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। दिव्य नेत्र से देखें और बाद में उसमें स्थित होते रहें और उसके हर गुण को अनुभव करते रहें, सातों गुणों को अच्छी तरह से अनुभव करते जाएं, तो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो दिन प्रतिदिन विकसित होता जाएगा। इसमें दो बातें हैं, पहली बात, दिन प्रतिदिन आत्मा को देखने का परसेंटेज बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य केवल आत्म अभिमानी बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्मअभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा, अंतिम दिन तक इस अभ्यास की मालिश पालिश करते रहे। तब बाबा ने अंतिम पेपर में फुल मार्क्स लिए, क्योंकि हमारा सबसे जास्ती लगाव मोह अपने देह के साथ होता है। जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा होते हैं। ये बॉडी के कंपनी ने हमें कौड़ी तुल्य बना दिया है, गॉड की कंपनी हमें हीरे तुल्य बनाती है। अभी बॉडी के कंपनी में रहना है या गॉड की कंपनी में रहना है, चॉइस है। तो समझदार व्यक्ति इस देह से न्यारा रहता है और बाबा के साथ का अनुभव करता जाता है। हमारे और बाबा के बीच में केवल एक छोटी सी दीवार है देह के बहन की। इस दीवार को अगर हटाते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति आप कर सकते हैं। इसलिए गुप्त ही गुप्त इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। कहते हैं जितना जो गरीब होता है उतना परमात्मा के करीब होता है। इस दुनिया में सबसे गरीब किसको कहते हैं? जिसको रहने के लिए घर नहीं होता है उसको गरीब कहते हैं। तो इस देह रूपी घर को भूल जाना है। बेघर माना बेघर, ये घर को भुला देना है और बाबा के करीब अनुभव करना है, अंग संग अनुभव करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह के भान को तोड़ो। जो 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में है उसको तोड़ना है, गलाना है। हम बाबा के बच्चों ने ही यह अभ्यास हर क्लब किया है और अच्छी तरह से किया है। लिखने वालों को तो माल मसाला मिल गया है, मेहनत हमने की है और उनको लिखने के लिए माल मसाला मिला है शास्त्रों में। पांडव जो है वो पहाड़ी पर चढ़ते गए, पांडव के साथ कुत्ता ही दिखाते और कुछ दिखाते ही नहीं, और कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता रहता और कुछ करते ही नहीं। तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना अर्थात आत्मा की जो पूंछ देह है उसको खत्म कर देना, हटा देना। कुत्ता भाग गया, जैसे ऊपर चढ़ते गए कुत्ता गायब हो गया, और चढ़ते गए गलते गए अर्थात आत्मा में जो देह का भान है वो भी गलता गया, और जैसे ऊपर चढ़ते गए अपने अपने गायब हो गए, परम धाम में अपने स्थान पर बैठ गए। ये हमारी यादगार है, हमने ही इसका अभ्यास किया है, केवल उसको हमने दोहराना है। इसलिए निराकारी स्थिति को हमने बहुत पक्का करना है। यही पहला पाठ, यही अंतिम पाठ और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, इसको हमने रियलाइज करना है। दूसरी बात, निराकारी से हम निर्विकारी बनते जाते हैं। देह समझने से बुद्धि देह की दुनिया में पदार्थों में संबंधों में जाती है, आत्मा समझते ही ट्रैक्ट बदल जाती है, बुद्धि ऊपर की ओर जाने लगती है। निराकारी दुनिया और निराकारी बाप की तरफ बुद्धि जाने लगती है। इसलिए निर्विकारी हम बनते हैं अर्थात योगाभ्यास के द्वारा हमारे विकर्म भस्म होते जाते हैं। लेकिन अभी आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को करने की। हम हर रोज ज्ञान का योग का अभ्यास करते हैं, इतने वर्षों से करते हैं, फिर भी जब हम व्यवहार में आते हैं हमें थोड़ा रोब आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आती है, बाबा का नाम बदनाम होने की भी संभावना होती है। इसका कारण क्या है? साधारण योगाभ्यास से हमारे जो कठोर संस्कार 63 जन्मों के विकारों के संबंधित हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं, वो गर्म भी होते हैं नरम भी होते हैं लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। उसके कारण उसकी खाद आत्मा में रहती है, इसलिए वो अंश वंश हमें अनुभव होते हैं। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कह दिया है साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का चल रहा है, उसके बिना कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि थोड़ा समय है, थोड़े समय में हमें विकर्मों को भस्म करना है, आत्मा पर जो दाग है विकारों के उनको हमने हटाना है और शक्तियों का खजाना जमा करना है जो अनेक आत्माओं की सेवा में हमें लगाना होगा। तो ये कार्य शक्तिशाली योगाभ्यास से ही संभव होगा, साधारण योग से संभव नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं को आत्मा तो अनुभव करना है, लेकिन बाबा के पास परम धाम में जब हम बैठते हैं तो हमारी बैठक शक्तिशाली होना जरूरी है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसी शक्तिशाली बैठक में बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो परमात्मा जो शक्तियों के पावर हाउस हैं उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होने लगती है। हम 87 में मधुबन निवासी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, मुरली के बाद डायरेक्ट बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे, शक्तिशाली योग की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा था शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि की तरह अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा एहसास होता है, अनुभव होता है। दूसरी तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की इसलिए होती है विकर्मों का बोझ हमारा कम होने लगता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम संपूर्णता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास हमको बढ़ाना जरूरी है, तभी निर्विकारी स्थिति हम बना सकते हैं। घर वापस जाने के पहले कोई भी ऐसा दाग विकारों के अंश वंश का मुझ आत्मा पर न रहे जो मेरी वैल्यू को कम कर दें, उसको मैंने मिटा कर ही जाना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करके रहूंगा करके रहूंगी। इसलिए आवश्यकता है अमृत वेले नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति करना। निर्विकारी स्थिति मेरी कहां तक बनी है अगर ये जानना चाहते हैं तो कैसे जाने, उसकी क्या परख है? दो तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। कहां तक निर्विकारी स्थिति मेरी बनी है, मन में जो भी संकल्पों का पैटर्न चलता है, संकल्पों की जो चेन चलती है उसको हमने चेक करना है। अगर अभी भी अपवित्र संकल्प मन में चलते हैं कभी कभी तो काम विकार की गंदगी अभी भी आत्मा में है, बदबू आत्मा में है, उसको हमने हटाना है। अपवित्र संकल्पों से फ्री हो गए, माना द्वापर युग से आप ऊपर उड़ गए, त्रेता युग में पहुंच गए, क्योंकि हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। दूसरी टेस्ट, निर्विकार स्थिति को परखने के लिए सपनों के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि सपनों में अर्ध चेतन मन काम करता है और हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे अर्ध चेतन मन पर होता है। इसलिए स्वप्न अगर हमें किसी भी विकार से संबंधित पड़ते हैं तो समझ लो वे विकारों की खाद मुझ आत्मा में अभी भी हैं। स्वप्न पड़ेंगे लेकिन संगम युग के बारे में, सेवा के बारे में, बाप दादा के बारे में ये स्वप्न जरूर पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने निर्विकार स्थिति को बनाते जाना है, और इस प्रक्रिया को अगर हम बहुत तेज करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर तरीका है। एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते चलें और दूसरे तरफ विशेष पांच दिव्य गुणों को धारण करने का प्रयास करते रहें। ये पांच विकार क्या चीज हैं? पांच विकार पांच दिव्य गुणों के अभाव है। जैसे अंधकार होता है उसको लाइट का अभाव कहते हैं, तो ऐसे पांच विकार पांच दिव्य गुणों के अभाव से आत्मा पर छा जाते हैं। सबसे पहला विकार काम विकार, ये क्यों आत्मा पर आता है? पवित्रता की जो लाइट है वो धीरे धीरे डल होने लगती है, तब काम विकार का अंधकार छा जाता है। इसलिए पवित्रता को हमें अच्छी तरह से अपनाना है। दूसरा विकार है क्रोध, ये क्यों आता है? शीतलता का जो दुगुण दिव्य गुण है वो धीरे धीरे जब डल हो जाता है तो क्रोध का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। तीसरा विकार है लोभ, इस संतुष्टता के गुण के अभाव से लोभ आता है, इसलिए संतुष्टता को भी जीवन में अच्छी तरह से अपनाना है। चौथा विकार है मोह, सबके साथ समान प्यार होना ये ब्राह्मण जीवन की शान है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार का प्रभाव प्यार का व्यवहार हमारा होना जरूरी है। लेकिन किसी व्यक्ति से विशेष लगाव होना, एक्स्ट्रा प्यार होना, इसको मोह कहते हैं, ये अवगुण है। तो हमें ये दिव्य गुण अपनाना है, सबके साथ समान प्यार करना, प्यार रहना। अहंकार, अहंकार जो विकार आता है ये नम्रता के दिव्य गुण के अभाव से आता है। तो कहने का भाव यही है, एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें और दूसरे तरफ इन पांच दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहें, तो हमारी प्रोग्रेस डबल होती जाएगी और हम जो निर्विकार स्थिति हमने बनानी है उस मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए गुप्त ही गुप्त ये भी हमें प्रसाद करना है, खास ध्यान देकर इन गुणों को अपने जीवन में धारण जरूर करना है। अभी निर्विकारी बनने के बाद ये निराकारी शब्द बाबा ने क्यों उच्चारण किया? निराकारी से हम निर्विकारी बनते हैं, उसमें पांच का पांचवा विकार अहंकार आ जाता है। अहंकार को खत्म होने के बाद फिर भी बाबा ने ये शब्द क्यों उच्चारण किया? निर अहंकारी बनो, मैंने 1995 में प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू इन तीन शब्दों पर ही लिया था। दादी जी से पूछा, दादी जी ये पांचवा विकार अहंकार जीतने के बाद भी बाबा ने ये निरंकारी शब्द को क्यों प्रयोग में लाया, इसका राज बताइए। तो दादी जी ने बताया था, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम खाली हाथ बाबा के पास आते हैं, झोली हमारी खाली रहती है। बाबा के पास आने के बाद जो हम प्रसाद कहते हैं, कुछ प्राप्तियां, उपलब्धियां, सिद्धियां, खजाने प्राप्त करते हैं, उन प्राप्तियों का अहंकार कभी कभी हमें आता है, मैं बहुत अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला हूं, बहुत अच्छा योगी हूं, बहुत अच्छा स्पीकर हूं, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, ये जो अहंकार है ये भी ना होना, इसको कहते हैं निरहंकारी बनना। कई बार हम देखते हैं शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग हम करते हैं। हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं, सब में वो रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। समान के सिंहासन पर बैठकर हमें बड़ी मस्ती में और नशे में झूमना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर ये सारा संसार चल रहा है, वो सर्वोच्च सत्ता मेरा बाप बन चुका है। इसलिए इतनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमारे चेहरे पर होना चाहिए, शुद्ध नशा। लेकिन शुद्ध नशा मुझे है या अशुद्ध अहंकार है, तो कैसे चेक करें? राजकुमार अगर अपने राजा राजधानी में विचरण करता है तो उसके चेहरे पर वो नशा होता है, मैं राजकुमार हूं और कल ये जो भी प्रॉपर्टी है, राजधानी है, इसका मालिक बनने वाला हूं, वो नशा उसके चेहरे पर दिखाई देता है, उसकी अपनी ड्रेस होती है। अगर वो नशा उसके चेहरे पर नहीं होगा तो लोग कहेंगे इसका राजा के साथ कनेक्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो हमें भी ईश्वर की संतान है, तो ईश्वरीय नशा आत्मा की ये ड्रेस है। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में सदा झूमते रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बागवान बाबा इस बगीचे को, रूहानी बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है। बहने माली है, बाबा बागवान है, तो बागवान क्या चाहता है, मेरे बगीचे का हरेक रूहे गुलाब कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, केवल खिला नहीं बहुत खिला हो। एक स्लोगन लिखो, बड़ा प्यारा स्लोगन है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी कोई देखना नहीं चाहेगा, ये रोती सूरत कौन देखेगा। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। बाबा चाहते हैं मेरा हर एक बच्चे के चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हो। लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर देखो हर्षित मुक्ता जेंटल स्माइल है। हम कभी कभी सफर करते हैं तो अपना चेहरा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला हुआ रखते पैसा। अरे दाता के बच्चे हैं, कुछ तो दो, खाली हाथ तो नहीं भेजो ना, स्माइल तो दो कम से कम, कुछ नहीं दो जेब से लेकिन स्माइल तो दो यार, कमाल है। दुनिया में कहते हंसना माना फंसना, हमें वो हंसना नहीं है, हमें जेंटल स्माइल रखना है चेहरे पर। कोई भी आत्मा मेरे चेहरे को देखे उसको कुछ न कुछ मिले। खाली हाथ कोई नहीं जा सकता है। एटलीस्ट बजाओ ना अच्छी तरह से, जरा जाता तालियां बजाओ जरा। ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, कोई भी मेरे दर से खाली हाथ नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा चेहरा दिव्य गुणों से सजा हुआ हो, संपन्न हो, चेहरा हरा भरा हो, सूखा चेहरा ना हो। इसलिए हमेशा चेहरे पर जेंटल स्माइल जरूर हो। कहीं कहते मैं तो बहुत खुश हूं, अरे खुशी तो चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं देती है, चेहरे पर भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। तो इसलिए खुशनुमा चेहरा हमारा होना जरूरी है। कहते हैं मन के भाव चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। मन अगर खुश होता है तो चेहरा भी खुशनुमा दिखाई देता है। इसलिए तीन चोर बार बार हमारी खुशी को छीनने के लिए हमारा दरवाजा खटखटाते रहते हैं। कौन से तीन चोर है वो? चिंता, भय और बोझ। किसी न किसी प्रकार की चिंता, किसी न किसी प्रकार का भय और किसी न किसी प्रकार का बोझ। किसी को पटकने नहीं देना है, तीनों को भगाना है और सदा मन से खुश रहना है और चेहरे पर खुशहाली ऑटोमेटिक अनुभव करना है। तो इसलिए अभी ये दोनों बातों को कैसे हम चेक करें कि मुझे शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, इसकी टेस्ट क्या है, इसको परखे कैसे। बिल्कुल सिंपल उसकी परख है, परीक्षा कर सकते हैं। जितना ऊंचा नशा होता है उतना वो व्यक्ति निर्माण होता है, ये उसकी निशानी है। बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा बाबा है। लेकिन मुरली के अंत में बाबा के चेहरे की तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते, झुकते हैं बाबा आंखों की तरफ देखो। इतनी बड़ी हस्ती और हमारे सामने नमस्ते करती है, जरूरत नहीं नमस्ते करने की, लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं देखो मेरे तरफ कितना मैं बड़ा हूँ और कितना निर्माण हूँ, सीखो मेरे से। तो हमें ये बाबा से सीखना है, जितना हम बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं, उतनी निर्माणता हमारे में आनी चाहिए। तो समझो मैं निर्विकारी निरंकारी बनता जा रहा हूं, बिल्कुल निरंकारी, प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है। थोड़ी भी अलाय अगर उसमें होती तो मोल्ड नहीं होता है। इसलिए हमें चेक करना है, एक तरफ शुद्ध नशा जरूर रहना है और दूसरे तरफ नम्रता को जरूर अपनाना है। नम्र भाव, नम्रता का भाव रहना, ये झुकना नहीं है, ये बड़प्पन की निशानी है। इसलिए इसको जरूर हमें अपनाना है। अभी आप सभी मधुबन में आए हुए हैं, बाबा ने ये गोल्डन चांस आपको दिया है, क्योंकि सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान ये मधुबन है। साधना करने के लिए सभी प्रकार के फोर्सेस, मददकार करने वाली बातें यहाँ उपलब्ध हैं। इसके एक एक पल को हमने सफल करना है और ऐसी स्थिति बनाना है जो बहुत ब्रह्मा बाबा के समान अचल अडोल स्थिति हमें बनाना ही है। एकांत में बैठकर, एकांत में बैठकर हमें अपने से पूछना है, भगवान तो मुझे मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला, ये अपने को चेक करना है। बाबा के पास आने के बाद अगर श्रेष्ठ स्थिति मैंने नहीं बनाई, उसमें सफलता नहीं पाई, तो ऐसा कह सकते हैं जितना फायदा मैंने लेना चाहिए उतना मैंने नहीं लिया। एक बार एक बात जिंदगी भर याद रखना ब्राह्मण जीवन में, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्थिति हो, स्तुति हो। लोग इतने बुद्धू नहीं है जो स्तुति करेंगे, जैसी स्थिति होगी वैसी स्तुति होगी, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होगी, आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा। इसलिए हमें ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति बनाना ही है, ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य सामने रखना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ के कदम आगे बढ़ाते जाना है। क्योंकि हमारी रेस योग में है, कितना अच्छा भाषण करते उसमें नहीं है, कितनी अच्छी धारणा करते उसमें भी नहीं है। राम भी करता है धारणा और नारायण भी धारणा करता है, कितनी अच्छी सेवा करते उसमें भी रेस नहीं है। हमारी रेस योगाभ्यास में है। ये तीनों सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए हमारा यही लक्ष्य हो, इस योग की रेस में मैंने नंबर लेना है, प्राइज विनर बनना है। चलो हम बाबा को याद करते हैं। अभी मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। बाबा हर मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, किसी को भी याद नहीं करो, मुझे याद करो। तो क्यों याद करो आपको बाबा बताओ तो सही। डंडा लेके पीछे पड़ा रहता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। भाई क्यों याद करे बताओ ना। बहुत मंथन मैंने इस पर किया तो उसका जवाब मिला कि ये सिद्धांत ही नियम है, हमेशा एनर्जी हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। इस दुनिया में आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स पावर हाउस केवल एक बाबा हैं। तो जब बाबा को याद करते हैं तो ही शक्तियां हमें मिलती हैं, और जब किसी भी व्यक्ति या वैभव को याद करते हैं तो शक्तियां खर्च होती है, शक्तियां घटती है। इसलिए बाबा सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला हमारा इस संसार में बाबा है। बाबा चाहते हैं ये मेरे हरेक लाल, ये मेरे लाल माला माल हो जाएं और मेरा नाम रोशन करें, यही बाबा की आश है। और हम सभी आशाओं के दीपक हैं, अगर हम वो पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे साथ कनेक्शन जोड़कर ये शक्तियां जमा करते रहें, जमा करते रहें, माला माल होते रहें। घाटे का सौदा हमने नहीं करना है। किसी भी देहधारी को, किसी भी व्यक्ति को, वैभव को याद करेंगे कुछ तो संकल्प चलेंगे ना, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, पवित्र संकल्प चलेंगे, अपवित्र संकल्प चलेंगे, कोई तो संकल्प चलेगा ना। तो उस संकल्पों से हमारी ऊर्जा घटती है, खर्च होती है, माइनस होती है। और अभी संगम युग में जमा करने का समय है शक्तियों का। खर्च सारा कलप हमने वो जमा किए हुए शक्तियों को खर्च करना होगा। इसलिए इस बात को हमें समझना है। और बाबा दूसरी बात कहते हैं, एक सेकंड भी मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाला, केवल बाबा के बच्चे हैं, केवल बाबा। ताली बजाओ जरा। जितने भी धनवान संसार में हैं, पेपर अखबार में आता है इसके फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर है, इतने खरब डॉलर है, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई केवल और केवल बाबा के बच्चों की होती है। इसमें हमने लोभी लालची बनना है। ये सच्ची कमाई साथ चलने वाली कमाई है, इसको हमने बढ़ाते जाना है। बाबा एक तरफ कहते कमाई करो, खूब कमाई करो, और दूसरे तरफ का माई माया को भी बेचता है, जाओ तुम्हारा काम है विघ्न डालना, मेरे पास इतने तो सिंहासन है ही नहीं, सतयुग में 8 और 108 और 16,000 है, इसलिए तुम्हारा काम है इसकी कमाई होने नहीं देना। बात में देखो बीच में हम फंस जाते। हाँ सुरेंद्र भाई इधर कहते कमाई करो और इधर माई को बेचता है, माया को बेचता है। तो कुछ भी हो, माया कुछ भी करे, हमने घबराना नहीं, डरना नहीं है, और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई हमने करना है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एक सेकंड याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई होती है। क्या यह बात सच है? अगर है तो कैसे है बताइए। एक अनेक पद्मों की कमाई, बापरे बापरे, अरब खरब नील कमल, उसके बाद पद्म आता है, अनेक पद्मों की एक सेकंड में, कमाल है। कैसी होती बताओ? योग से होती है। जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से हमें शक्तियां मिलती है, और जितनी शक्तियां मिलती हैं हमारे मन और बुद्धि जो भी कर्मेंद्रियां हमारी हैं उन पर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हमें प्राप्त होती है, और जितनी हमारे पास रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर होती है परमधाम रूपी घर जाने के बाद जब सतयुग में वापस आते हैं तो उसके आधार पर राजा का सिंहासन मिलता है, महाराजा का मिलता है। जितनी रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर जास्ती होता है उतना बड़ा पद मिलता है हमें, और ऊपर से आते ही इतनी बेहिसाब प्रॉपर्टी, क्या सोना, क्या महल, क्या अनाज, ये ऊपर से आते ही एक जन्म नहीं, इतनी 21 जन्म कौन देता है भाई? कब देता है, कैसे देता है? उसका जवाब है योग के द्वारा। और जो योग नहीं लगाते हैं उनके पास ये दोनों शक्तियां नहीं होती हैं, वो शुरू से ही नौकर चाकर प्रजा के घर में जन्म लेते हैं, वहां प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी रहती है। तो इसलिए हर पल हर घड़ी हमें बहुत अच्छी तरह से अविनाशी कमाई करते जाना है, शक्तियों को जमा करते जाना है, और स्वयं को माला माल करते जाना है, बैटरी को फुल चार्ज करना है। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए रखते हैं और कोई बहुत जरूरी काम होता है ना, वो आधी चार्ज की हुई मोबाइल लेके चल पड़ते, और दिन भर में कभी धोखा भी देता है वो मोबाइल हमें, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होता है तो आगे बढ़ाने के लिए किसी किसे मोबाइल मांगना पड़ता है, कैन आई बोरो योर सेल फोन प्लीज, चेहरा उस समय देखना अपना, चेहरा भी डिस्चार्ज होगा, बैटरी तो होगी चेहरा भी डिस्चार्ज होगा। तो इस आत्मा की जो मोबाइल की, आत्मा की जो बैटरी है शरीर रूपी मोबाइल की, हमने घर जाने के पहले फुल चार्ज करना भी है, केवल चार्ज नहीं फुल चार्ज करना है, क्योंकि हमने 5,000 वर्षों तक इसको चलाना है। बीच में हमें संगम युग के बिना बीच में कभी भी चार्ज करने का समय मिलने वाला नहीं है, चांस मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से योगाभ्यास में रुचि रखना है और निराकारी स्थिति को बहुत पक्का करते जाना है, और निर्विकारी स्थिति और निरहंकारी स्थिति को भी मेंटेन करते जाना है, चेक करते जाना है बीच बीच में, क्या मैं निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है भाई? तो अभी हमने बहुत पावरफुल योग 15 मिनट करना है, इसलिए एक बार सभी जोर से तालियां बजाएंगे। ये थोड़ा सुस्ती का समय है ना, इसलिए आपको चुस्त कर रहे हैं। सभी सीधा बैठो, अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठो, और बिल्कुल अलौकिक मस्ती में खो जाओ। ओम शांति। इस साकारी शरीर में। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं निराकारी आत्मा निराकारी देश से इस साकारी दुनिया में पांड बजाने आई थी। अभी इस साकारी शरीर में विराजमान हूँ। सात गुणों वाली सप्तऋषि निराकारी मैं आत्मा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। यह देह तो मेरा मकान है, मेरा साधन है, मेरा वस्त्र है, मेरा मूल अस्तित्व एक ज्योति बिंदु निराकारी स्वरूप में ही है। निराकारी बाप ने इस बेहद ड्रामा में मुझे हीरो पाटधारी बनाया है। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ड्रामा के डायरेक्टर से मुझे हर रोज डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मिलता रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गुणगान मुरली में करते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकारी बिंदु आत्मा इस साकारी देह से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। ओहो, मैं निराकारी आत्मा आकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है, मुझ निराकारी आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस, धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चम चमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह रहे हैं, सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, तुम्हें वो माता स पिता तुम्हें वो वायदा मैं निभाने आया हूं। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। तो कभी परम शिक्षक के रूप में मुझे अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट निराकार भगवान साकार माध्यम से मुझे हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान लेते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। तो कभी मुझसे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, खेलो, चलो, रास रचाओ। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, परम धाम मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मोज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। जी भर के देख रही हूं बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति निराकारी बाप से, शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग के पखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को निर्विकारी अनुभव कर रही हूं। हल्कापन और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। स्वयं को निरहंकारी अनुभव कर रही हूं। बाबा की कंपनी का असीम आनंद ले रही हूं। मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, ना देखू तुझे तो लागे नहीं जिया, खिले नहीं जिया। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठ कर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया आकारी दुनिया, साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर, विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूं। मौज शक्तिशाली निराकारी आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं। ओम शांति।